नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। शंघाई सहयोग संगठन के घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराने को कहा। चीन के तियानजिन में सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने पर बल दिया। भारत ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान में मानवीय सहायता पहुंचाई, मृतकों की संख्या 800 से अधिक हुई। चीन और रूस ने यूरोपीय देशों के परमाणु समझौते को लेकर ईरान पर प्रतिबंधों को बहाल करने का विरोध किया और इंडोनेशिया में भीषण दंगों के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन SCA देशों से आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने सदस्य देशों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराने को कहा।
भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई।
शंघाई सहयोग संगठन के 25वें शिखर सम्मेलन में तियानजिन घोषणा पत्र को अपनाया गया, जिसमें आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ एक दृढ़ और एकजुट संदेश दिया है। सदस्य देशों ने एक स्वर में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की, पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस जघन्य कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। घोषणा पत्र में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करते हुए सीमा पार आतंकियों की आवाजाही को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। इस दस्तावेज में भारत की वैश्विक दृष्टिकोण, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को भी मान्यता दी गई है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने में भारत की नेतृत्व भूमिका को पुनः पुष्ट करता है। नई ऊर्जा और मजबूत संकल्प के साथ तियानजिन में आयोजित 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय भागीदारी और रणनीतिक संवादों ने भारत की भूमिका को एक स्थिर शक्ति और वैश्विक शांति एवं विकास में एक प्रमुख साझेदार के रूप में और भी सशक्त किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, तियानजिन।
सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्थिक, वित्तीय तथा ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर आज विचार विमर्श किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में सतत वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन से जुड़े ताजा घटनाक्रमों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए हाल में किए गए प्रयासों के प्रति समर्थन दोहराया।
कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है।
प्रधानमंत्री ने श्री पुतिन से कहा कि वे इस वर्ष के अंत में भारत में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में उनका स्वागत करने को इच्छुक हैं।
दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एसएलजी हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जापान और चीन के सफल यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सम्मेलन में यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में भारत के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने शांति स्थापित करने में भारत और अन्य रणनीतिक साझेदारों के योगदान के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। इससे पहले शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत की जानकारी दी। श्री पुतिन ने कहा है कि पिछले महीने अलास्का में हुई बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनकी महत्वपूर्ण सहमति बनी। चीन में श्री पुतिन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ शांति वार्ता में शामिल होंगे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप में 812 लोग मारे गए और 2,817 अन्य घायल हुए हैं। भूकंप के कारण कई गांव तबाह हो गए हैं और संचार व्यवस्था में बाधा आई है। इसके कारण बचाव कार्यों में परेशानी आ रही है। नूरगल जिले में अधिकतर पीड़ित अब भी मलबे में दबे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि उसके कर्मचारी भूकंप प्रभावित इलाकों में जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विनाशकारी भूकंप में हुई जन हानि पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत भूकंप से प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने आज काबुल में 1,000 परिवारों के लिए टेंट पहुंचाए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि भारतीय मिशन ने काबुल से कुनार तक 15 टन मानवीय सहायता भेजी है। कल से भारत से और राहत सामग्री भेजी जाएगी। चीन और रूस ने ईरान का समर्थन करते हुए E3 देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की स्नैपबैक व्यवस्था के अंतर्गत ईरान पर प्रतिबंधों को स्वतः बहाल करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये व्यवस्था पिछले सप्ताह शुरू की गई है। ईरान पर 2015 के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप है। इसमें ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के बदले में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंधों से राहत दी गई थी। चीन और रूस ने E3 देशों के साथ ईरान के 2015 के परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इंडोनेशिया में भीषण दंगों के बाद सैकड़ों विद्यार्थियों ने आज सड़कों पर प्रदर्शन किया। इन दंगों में 8 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारी जकार्ता में राष्ट्रीय संसद के बाहर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और असमानता पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए राजनेताओं से जवाब मांगा। इसराइल ने शनिवार को गाजा शहर पर हवाई हमलों में हमास प्रवक्ता अबू उबैदा के मारे जाने की पुष्टि की है। हालांकि हमास ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर समीना लुत्फा ने कहा है कि राजनीतिक रूप से निहित स्वार्थी तत्वों के एक वर्ग ने अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति के लिए जानबूझकर बांग्लादेश को अस्थिर किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अस्थिरता को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ रही है। बांग्लादेश ने पहले कभी कानून व्यवस्था की इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी। बिहार में हॉकी एशिया कप में अपने अंतिम पूल मैच में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 के बड़े अंतर से हराया। अभिषेक ने 4, सुखजीत सिंह 4 और युवराज सिंह ने 3-3 गोल किए। वहीं कप्तान हरमनप्रीत सिंह, दिलप्रीत सिंह, राजेंद्र सिंह, अमित रोहिदास और संजय ने 1-1 गोल दागा। भारत पूल ए में अपने तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर है। भारतीय टीम पहले ही सुपर फोर में पहुंच चुका है। अन्य मुकाबलों में आज मलेशिया चीनी ताइपर पर 15-0 से जीत दर्ज कर सुपर फोर में पहुंच गई। वहीं चीन और जापान के बीच मैच 2-2 गोल से ड्रॉ रहा। पूल बी में कोरिया ने बांग्लादेश को 5-1 से पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शंघाई सहयोग संगठन के घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराने को कहा। चीन के तियानजिन में सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने पर बल दिया। भारत ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान में मानवीय सहायता पहुंचाई। चीन और रूस ने यूरोपीय देशों के परमाणु समझौते को लेकर ईरान पर प्रतिबंधों को बहाल करने का विरोध किया और इंडोनेशिया में भीषण दंगों के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।